इट्स अ डिल्यूजन, इट्स अ ट्रैप, और हमें अपनी जिंदगी में ही इस ट्रैप से बाहर निकल आना चाहिए। याद रखें, फॉर इटर्निटी याद रखें इस बात को कि अगर मुझे आखिरत की सैलवेशन चाहिए तो मुझे अपने कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। सो ये थे अल्लाह के रसूल के चचा में सेकंड कैटेगरी, नहायत मोहब्बत करने वाले, नहायत एहतराम करने वाले, नहायत काबिल एहतराम मुसलमानों के लिए भी। वो जो उनका मामला है जिसपे उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, दैट इज कम्प्लीटली बिटवीन हिम एंड अल्लाह। आप और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन चचा की कम्प्लीट रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो आपके चचा की तीसरी कैटेगरी, जिसमें कि आप देखती हैं कि हमने अबू लहाब को प्लेस करना है, ये थर्ड कैटेगरी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ओपन हेट्रेड थी। ऑल दो डोंट फॉरगेट, अबू लहाब रसूलल्लाह से आपके प्रॉफिटहुड से पहले बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन आपका ये ईमान का दावा डिक्लेयर करना, इससे उसकी नाक नीचे हो रही थी, इससे उसके आबा का पोजीशन और उनका एक जो रोब और दबदबा था वो कम हो रहा था। उसकी एरोगेंस ने उसको रसूलल्लाह से नफरत की तरफ धकेल दिया। ये तीसरी कैटेगरी आपके चचा की जिसमें अबू लहाब आता है, ओपन हेट्रेड थी इसको रसूलल्लाह से और इस्लाम से। आपका सगा चचा होने के बावजूद इसने आपके साथ इंतहाई दुश्मनी का मामला किया। तो एक बात मैं यहाँ एक और जस्ट फॉर तसल्ली मैं बता दूँ, कभी कभी ज़िंदगी में हमें अपनों से बड़ी ज़बरदस्त ठोकरें लगती हैं। कभी वो ठोकरें बड़ी ऑब्वियस होती हैं और कभी वो ठोकरें जो हैं वो दुनिया को नहीं नज़र आ रही होती हैं, बट जिसने आपको ठोकर मारी होती है वो जानता है, या जिसने ठोकर खाई होती है वो जानता है। और अपनों से ही इंसान को ठोकर लगती है। ऐसे में इंसान, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ इंसान, ये सोचता है कि अल्लाह मैं तो आपके इतने करीब हूँ, मैं आपको खुश करने की कोशिश करती हूँ, मेरे अपने रिश्ते मुझे हर्ट करते हैं, मेरे अपने रिश्तों ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी, मेरे अपने रिश्तों ने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने रिश्तों ने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे अपने रिश्तों ने मुझसे नाइंसाफ़ी की। अगर आपको कभी ऐसी फीलिंग्स आए और शैतान आपके दिल में डाले कि देखो बहन अब तुम थक गई, बस कह दो कि अब मैं इन लोगों के साथ जो हूँ वो अपना हक निभाते निभाते थक गई हूँ, इसलिए कि इन्होंने तो कॉन्स्टेंट मेरे साथ ज़्यादती की है, और कोई ज़िंदगी में इन्होंने एक ऐसी ज़्यादती कर दी, इसलिए कि बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी बड़ी ज़्यादती, ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी कर देते हैं कि वो कभी भी उस मुकाम पर नहीं आ सकते। आप उनके साथ अख्लाक के होते हैं, आप उनका हक भी अदा करते हैं किसी न किसी लेवल पर, जब क्योंकि आप अल्लाह की खातिर माफ़ करते हैं तो मोहब्बत भी डिवेलप हो जाती है। बट अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स, कभी भी आप उस मुकाम पर उनको नहीं ला पाते जो मुकाम उनको आप दे पाते शायद अगर उन्होंने आपके साथ ज़्यादती ना की होती। तो आप सबको तसल्ली देने के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी ने ज़्यादती के एंगल पर अपने आप को खड़ा किया हुआ है, आप बेहतर है कि दुनिया में ही लोगों के हक अदा कर दें, बेहतर है कि जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको आज ही अदा कर दें, इससे पहले कि आखिरत में सारी नेकियों की पोटली उठाकर उस मजलूम इंसान को दे दी जाए जिसका आपने मामला खराब किया था दुनिया में। और अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्यादती की है, मैं आप सबको इस वक्त इस मिसाल को सामने रखने को कहूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ब्लड रिलेशन था, आपके वालिद के भाई थे अबू लहब, और ये हाल कर रहे थे रसूलुल्लाह के साथ। रसूलुल्लाह यतीम थे, बचपन से आपने वालिद को नहीं देखा, वालदा आपकी इतनी यंग एज में चली गई, मोहब्बत करने वाले दादा आपके चले गए, और इस शख्स का, इस चचा का हाल यह था कि इसने शफकत का हाथ आपके आपके सर पर नहीं रखा। रसूलल्लाह आसमाए गए अपनों से, तो नहीं कहा करें कि मैं थक गई। याद रखें, हमें लगता है हम थक गए, लेकिन अगर हमारे फीलिंग्स के बावजूद आजमाइशें खत्म नहीं हो रही तो या इस आयत को याद कर लिया करें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह अपने बंदे को उसकी ताकत से बढ़कर नहीं आजमाता, वो अपने बंदे के बहुत करीब होता है। मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, मकसद यही है हम अल्लाह का दामन ना छोड़ें, अखलाक का दामन ना छोड़ें, और लोगों के हक मारने के बावजूद हक देने वाले बने रहें। यह है जो आखिरत में आपको सुरखरू करेगा। सो ये तीन कैटेगरीज थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की हैं। नाउ कमिंग बैक ऑन द वर्ड्स ऑफ द आयात, तब्बत यदा अबी लहब, लहब का लफ्ज जो आया है, अगेन अभी लहब यहाँ एज अ फ्रेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट नहीं आया. आपको बताया था मैंने लहब कहते हैं अरबी जुबान में रेड फ्लेम को, रेड फ्लेम को. ये लहब का लफ्ज जो है, अगर आप कभी इब्ने कसीर अल मक्की रिसाइटर हैं, कुर्रा हैं, अगर आप इनको सुनेंगी इब्ने कसीर अल मक्की को, तो ये इसको पढ़ते हैं लह बिन, हा पर सुकून के साथ पढ़ते हैं लह बिन. लेकिन मेजॉरिटी कुर्रा इसको पढ़ते हैं लह बिन, हा पर फतहा के साथ, जबर के साथ. ठीक है, तो लहब कहते हैं अरबी जुबान में रेड फ्लेम को, यानी एक शोला जिस शोले जो फ्लिकर करता रहता है. अरबी जुबान में शोले के लिए और अल्फाज मआरिज भी आता है, शरारा भी आता है. अल्लाह ताला ने यहां पर अभी लहब जो इस्तेमाल किया वो एज अ कॉम्प्लीमेंट उसकी कुन्नियत को नहीं इस्तेमाल किया. याद रखें अबुल हकम किसकी कुन्नियत थी, हम सब जानते हैं अबुल हकम, दैट वॉज द कुन्नियत ऑफ अमर बिन हिशाम. अमर बिन हिशाम कौन था? अमर बिन हिशाम वॉज अबू जहल. आप में से कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे थे, कल मेरे पास कुछ दो तीन स्टूडेंट्स ने सवाल किए कि क्या अबू लहब और अबू जहल एक ही थे? नहीं, अबू जहल अलग है और अबू लहब अलग है. अबू लहब अब्दुल उज्जा बिन अब्दुल मुतल्लिब और अबू जहल अमर बिन हशाम है. याद रखें अब अमर बिन हशाम भी इस्लाम के बड़े दुश्मनों में एक दुश्मन था और बुरी तरह से बदर में इसको अल्लाह ताला ने नीचा किया, बुरी तरह से बदर में ये मारा गया. अमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब, इन दो के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह इन दो में से किसी एक को इस्लाम की सपोर्ट में खड़ा कर दे. अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब के दिल की खैर को देखते हुए उनको सेलेक्ट कर लिया. अमर बिन हशाम का टाइटल था, कुन्नियत थी कुरैश में अबुल हकम, द फादर ऑफ विजडम. लेकिन अबू जहल को, अबू जहल कुरैश के लीडर्स नहीं कहते थे, ये मुसलमानों ने इसका नाम रखा था. बदन में जब मारा गया था तो जिस मक्का के शख्स ने आकर कुरैश के पीछे लीडर्स को अनाउंस किया था कि ये लीडर्स मारे गए, तो जब उसने नाम लिया था तो उसने कहा था अमर बिन हशाम अबुल हकम मारा गया. और जब मुसलमान खबर लेकर मदीना पहुंचे थे बदर के मैदान से कि कौन कौन कुरैश के लीडर मारे गए, तो उन्होंने कहा था अमर बिन हशाम अबू जहल कत्ल कर दिया गया. मुसलमान उसको अबू जहल कहते थे अमर बिन हशाम को, और कुरैश उसको अबुल हकम कहते थे. ऐसी हिकमत का, ऐसी विजडम का, ऐसी अक्ल का, ऐसी इंटेलेक्ट का कोई फायदा नहीं है जो इंसान को रब तक ना पहुंचा सके. ऐसी डिग्री का, ऐसे एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स का कोई फायदा नहीं है जो इंसान को इस्लाम की वैल्यू ना सिखा सके. तो ये जो यहां पर अबू लहब आयत में आया, अल्लाह ने उसका नाम क्यों नहीं मेंशन किया? उसका नाम क्या था? अब्दुल उज्जा. और अल उज्जा, अब्दुल उज्जा का मतलब क्या था? उज्जा उनके बुत का नाम था, वन ऑफ द ग्रैंड आइडल ऑफ द कुरैश, उसका नाम उज्जा था. लात मनात उज्जा याद है ना, सूरह नूह के अंदर आपको ये नाम मिलते हैं, लात मनात उज्जा, और इसके अलावा भी कुरान में मिलते हैं. तो ये जो इनके बुत थे, सूरह नूह में नहीं आते, सॉरी, एक और जगह कुरान में लात मनात और उज्जा आते हैं. तो ये इसका नाम था अपने आइडल के नाम पर, अब्दुल उज्जा इसका नाम था. स्कॉलर्स कहते हैं कि कैसे हो सकता था कि अल्लाह ताला कुरान में तब्बत यदा अब्दुल उज्जा या अब्दुल उज्जा मेंशन कर देता. अब्दुल उज्जा तो फेक थ्योरी है, इंसान किसी का अब्द नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के, फॉल्स गॉड की स्लेवरी नहीं हो सकती. तो अल्लाह झूठे इलाह को, इस फॉल्स थ्योरी को उसके नाम के तौर पर भी अपने कलाम का हिस्सा कैसे बनाता? सो दिस इज द रीजन नंबर वन कि अल्लाह ताला ने उसका नाम मेंशन नहीं किया. रीजन नंबर टू, उसकी कुन्नियत जो कि अरब के लिए कॉम्प्लीमेंट थी उसको देने वाला अबू लहब, उसको यहां मेंशन क्यों किया? अल्लाह ने अबू लहब की कुन्नियत की कॉनोटेशन बदल दी. गॉट इट? कुरैश अबू लहब कहा करते थे उसको उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी एसोसिएशन की वजह से जो कि उसको नेमतें दुनिया में दी गई थी. अल्लाह ने उसको अबू लहब कहा है ड्यू टू उसका एसोसिएशन विद द नार, उसके अहले नार होने की वजह से उसको अबी लहब कहा गया है, इसलिए कि फ्लेम्स उसका मुस्तकबिल है, अब उसकी एसोसिएशन फ्लेम्स के साथ होगी, जहन्नुम में रहने वाला होगा, आगे आ जाएगा सायसला नारन, अब तो वो आग में ही भूना जाएगा, उसी में रोस्ट किया जाएगा. तो जैसे अबू लहब कॉम्प्लीमेंट्री कुनियत थी उस शख्स की खूबसूरती की वजह से कुरान ने उसकी कॉनोटेशन बदल दी। गुड लुकिंग होने की वजह से उसको यहां अबू लहब मेंशन नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको कॉन्स्टेंटली आग में पड़ा रहने की वजह से यहां पर अबू लहब मेंशन किया जा रहा है कि अब वो कॉन्स्टेंटली आग में भूना जाएगा। बड़ा शौक था उसको दुनिया में अपनी तारीफें करवाने का, कॉम्प्लीमेंट सुनने का। बड़ा शौक था दुनिया में उसको कि उसको रेड फ्लेम से एसोसिएशन दी जाए, उसी नाम से उसको पुकारा जाए। तो ठीक है, आखरत में भी उसकी कॉनोटेशन में, उसकी सजा में अन्नार, ये फ्लेम्स मौजूद हैं। दिस इज द सार्कैज़म ऑफ कुरान एक्चुअली कॉलिंग हिम एज अबी लहब। तब्बत यदा अबी लहब, दोनों हाथ अबू लहब के टूट गए, और वो जो हमेशा आग में फ्लेम्स में पड़ा रहेगा, रेड हॉट फ्लेम्स में पड़ा रहेगा। आखिरी लफ्ज देखें इस आयत का। ये आयत इतनी स्कॉलर्स कहते हैं इट वॉज इनफ एज अ कर्स, इट वॉज इनफ एज अ बद्दुआ। तब्बत यदा अबी लहबिन, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, और आपने अब इतनी डिटेल में समझ लिया कि दोनों हाथों से मुराद कहां तक गई है। अगेन एक एम्फेसिस है, अल्लाह ने कहा वतब्बा, वतब्बा एक और फेल आ गया, फेल माजी आ गया, अगेन कर्स आ गया, अगेन ताबाबा तबाब आ गया, द स्लो डिस्ट्रक्शन आ गया। क्यों आया? उसका एक उसूल क्लासिकल स्कॉलर्स देते हैं, वो कहते हैं तब्बत यदा अबी लहब अव्वलुल दुआ, ये अल्लाह की तरफ से कर्स है, बद्दुआ है। व तब्बा वसानियुल खबर, पहली कर्स है और दूसरा इंफॉर्मेशन है। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, व तब्बा, और वो तबाह हो गया। ऑलरेडी श्योरिटी थी तब्बत में, अल्लाह ने मजीद श्योरिटी अपॉन श्योरिटी दे दी, और इस इंसान का इंतकाल जैसे हुआ है, दुनिया ने देखा जो उस वक्त मौजूद थी, और आज का हर मुसलमान जो इस सूरत को स्टडी करता है उसके लिए इबरत है। वह तब्बा के अंदर उसकी दुनिया और आखरत हलाक हो गई, तबाह हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, तब्बत यदा के अंदर। वह तब्बा ने और वाजे कर दिया कि जिन्होंने देखा था उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने देखा था उन्होंने आगे बताया, और कुरान रहती दुनिया तक आखिरी इंसान को जो इसकी तिलावत करेगा इसके कर्ज के बारे में बताता रहेगा। अबू लहब के लिए आता है इतनी नेमतें, इतनी पावर, इतनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल स्टेजेस होने के बावजूद ही वॉज अ कावर्ड पर्सन एज कम्पेयर टू अबू जहल। अबू जहल बहुत ब्रेव था, इसलिए अगर आप उसके किस्से पढ़ें, जब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने उसकी गर्दन काटी है तो बाज़ नरेशंस में उसकी गर्दन काटने के बारे में आता है कि जब, अब वो बात लंबी हो जाएगी, एट एनी अदर प्लेस इंशाल्लाह, नॉट राइट नाउ, एक लंबा अच्छा वाक्य है, एट एनी अदर प्लेस। इन शॉर्ट अबू जहल जो है वो बहुत करेजियस था, अबू लहब बहुत कावर्ड था। और याद रखें अबू लहब दुनिया परस्त था, वेरी मटीरियलिस्टिक। अबू लहब को वेल्थ से मोहब्बत थी, पोजीशन से मोहब्बत थी, पावर से मोहब्बत थी, अपने जाहो जलाल से मोहब्बत थी, अपने लीनियत से मोहब्बत थी। सो हियर इज अ पॉइंट फॉर रिफ्लेक्शन। जो मटीरियलिस्टिक इंसान होते हैं उनको मरने से बड़ा ही डर लगता है, जिनके लिए दुनिया ही सब कुछ होती है उनको मौत हर वक्त डराती रहती है। जिन्होंने अपनी सारी तैयारी और अपनी सारी पावर गेन सिर्फ और सिर्फ दुनिया में रखी होती है और दुनिया के लिए ही की होती है, जिनका पूरा बैंक बैलेंस सिर्फ दुनिया होती है, उनको मौत के लफ्ज से भी खौफ आता है। सेम वॉज द केस विद अबू लहब, ही वॉज अ वेरी कावर्ड पर्सन। जब बदर का मामला हुआ है तो अबू लहब के लिए आता है कि ही वॉज सो स्केयर्ड कि इसने एक वॉरियर से, जिसने इससे लोन लिया हुआ था 4,000 दिरहम के करीब, एक वॉरियर था जिसका नाम आता है अल आस इब्ने हिशाम इब्ने मुगीरा। अब मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ, सो आई एम श्योर आप लोग इनशाला कुछ ना कुछ क्लिक करेंगे। यू एनी वन ऑफ यू कैन गेस ये कौन था, अल आस इब्ने हिशाम इब्ने मुगीरा, या कौन हो सकता है? अभी मैंने आपको एक नाम बताया था, अमर बिन हशाम। अल आस इब्ने हिशाम असल में अबू जहल का भाई था, और अबू जहल के भाई ये भी बहुत बहादुर था, जैसे अबू जहल बहादुर था, वॉरियर था, इसने अबू लहब से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। तो अबू लहब इसके पास गया जबकि कॉल आउट हुआ कि सब लोग जो हैं वो मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए पहुंचे और निकले यहां मक्का से। अबू लहब इसके पास गया, आस इब्ने हशाम के पास, और इससे कहा कि देखो तुमने मेरे 4,000 दिरहम देने हैं ना, मैं उनको छोड़ दूंगा, तुम मेरी जगह पर जाकर बदर में फाइट करो, मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा, जस्ट गो फाइट ऑन माई बिहाफ। तो बदर में लड़ने के लिए भी नहीं गया, ऑल्दो इतना विशियस दुश्मन था, इतना रैचिड दुश्मन था, लेकिन डरपोक दुश्मन था। इसने अपनी जगह बदर में लड़ने के लिए अपने एक इस तरह के सिपाही को जिसने इसका लोन देना था उसने भेज दिया। सीरत की किताबों में आता है कि बदर में मुशरिकीन की डिफीट की खबर जब मक्का पहुंची है, जितने भी मक्का में एक लाइन ऑफ मेजर लीडर्स थे वो सब के सब बदर में पहुंच गए थे मुसलमानों को क्रश करने के लिए, सब के सब बदर में पहुंच गए थे। और जब वहां से खबर आई बदर के मैदान से कि फलां इब्ने फलां कत्ल कर दिया गया, फलां इब्ने फलां कत्ल कर दिया, फलां इब्ने फलां कत्ल कर दिया गया, तो लोगों के वहां पर हवाइयां उड़ गई थी मक्का में जो पीछे कुरैश मौजूद थे। कहा जाता है कि बदर में 70 लीडर्स कुरैश के जो थे वो मारे गए थे और 70 को कैदी बना लिया गया था। और पीछे मक्का में 2 VIP बचे थे इन अ फॉर्म ऑफ लीडरशिप, एक अबू लहब और दूसरे अबू सुफियान। अबू सुफियान इसलिए बच गए थे, अबू सुफियान डरपोक नहीं थे, अबू सुफियान इसलिए बच गए थे कि वो उस कारवान के साथ गए हुए थे जिसको मैनेज करने के लिए मुसलमान मदीना से निकले थे। आप में से जिन लोगों ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है आपको मालूम होगा कि मदीना से मुसलमान इस गजवाए बदर के लिए नहीं निकले थे, वो तो उस कारवान को, उस काफले को मैनेज करने निकले थे जो अबू सुफियान का जो वहां से गुजर रहा था। वो तो फिर बाद में एकदम से मौका बनता गया, सिचुएशन बनती गई और ये जंगे बदर में कन्वर्ट हो गया। तो अबू सुफियान इसलिए उस मार्के का हिस्सा नहीं बने कि वो काफला लेकर मक्का पहुंच रहे थे। इधर पीछे 2 ही लोग रह गए, एक ही रह गया जिसने के बदर में अपना हिस्सा नहीं लिया। अब जब ये खबर आई और उस खबर में ये भी उसने बताने वाले ने बताया जो कि आया था खबर बताने वाला कि 70 लोग मारे गए, 70 को कैदी बना लिया मुसलमानों ने और उन कैदियों में अल अब्बास भी शामिल हैं, यानी ये खबर आई कि अल अब्बास आपके जो चचा हैं वो कत्ल नहीं हुए हैं बल्कि उनको असल में कैदी बना लिया मुसलमानों ने। तो अबू लहब फौरन ये सब खबर सुन के इसको रिकन्फर्म करने के लिए अल अब्बास के घर आया। अल अब्बास आपके चचा तो घर पर नहीं थे, उनकी वाइफ वहां मौजूद थी कि ताकि वो उनसे पता करें कि भाई इस तरह से एक मुशरिक डिटेल्स लेकर आया है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो मुझे बताएं कि बदर में क्या हुआ है। रिकन्फर्म करना चाह रहा था कि वाकई सीवियर डिफीट हुई है या ये खाली जो है र्यूमर्स आ रही हैं। सो जो अबू लहाब जब इनके घर पर आया तो अबू लहाब अल अब्बास के घर में इनका एक सर्वेंट था जो इनकी वाइफ के साथ, इनकी वाइफ को उम्मे फदल कहा जाता था, उम्मे फदल का एक सर्वेंट था अबू राफे। अबू राफे, अब नाउ कीप होल सिनेरियो इन माइंड, हिजरत मदीना हो चुकी है, सो मेजरली सारे मुसलमान ट्रैवल कर गए थे मक्का से, सिर्फ वो चंद नेक मुसलमान, कमजोर ईमान के मुसलमान कुछ पीछे रह गए थे जिन्होंने भी अपना ईमान डिक्लेयर नहीं किया था और वो हिजरत करने की कैपेसिटी में थे नहीं। अल अब्बास का एक सर्वेंट अबू राफे वो उन वीक मुसलमानों में से एक थे और ये अल अब्बास की वाइफ उम्मे फदल के पास थे उस वक्त जबकि अबू लहाब आया। तो जब अबू लहाब आया और इसने पूछा कि एक शख्स आया है और उसने ऐसे बताया है कि कुरैश के लीडर्स को जबरदस्त डिफीट हुई है और हम कंप्लीटली ओवरकम हो गए हैं और हमारे 70 लीडर मारे गए, 70 को इस तरह से पकड़ लिया, और जो खबर बताने वाला आया है वो कह रहा है कि हमने सफेद कपड़ों में मौजूद लोगों को मुसलमानों के बराबर बदर के मैदान में लड़ते हुए देखा है और हम नहीं जानते कि वो लोग कौन थे, यानी वो नए लोग थे, स्ट्रेंजर लोग थे, हम उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। अबू राफे जो अब तक अपना इस्लाम छुपाए हुए थे स्पॉन्टेनियसली उनके मुंह से निकला एक्साइटमेंट में, सुन रहे थे ना सारी बातें जो उम्मे फदल से ये कर रहे थे, अब ये कर रहा था अबू लहब, तो जैसे ही उन्होंने ये सुना एक्साइटमेंट में बोले दे मस्ट हैव बीन एंजल्स, मलाइका होंगे। अबू लहब को ये सुनकर शदीद गुस्सा आया, परेशान पहले ही था, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट था इसलिए कि अकेला रह गया था इस वक्त मक्का में एज अ लीडर और बाकी सारे मारे गए थे, तो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट था, बहुत परेशान था। जब इसने अबू राफे की जुबान से ये सुना कि मलाइका होंगे और अबू राफे ने बहुत ही एक्साइटमेंट में कहा, इसको इतना गुस्सा आया अबू लहाब को कि इसने एक उसको अबू राफे को पकड़ के बाकायदा ब्रूटली वायलेंटली मारना शुरू कर दिया। उम्मे फदल रोकती रही, वो नहीं रुका, यहां तक कि उम्मे फदल को अपने सर्वेंट को, अपने गुलाम को बचाने के लिए एक स्टिक उठानी पड़ी, उन्होंने जोर से अबू लहब को मारी, स्टिक मारी तो उसके सर पर लगी और सर में से उसके ब्लीडिंग होने लग गई। बहुत ही एक ह्यूमिलिएटिंग वे में वहां से ये इस तरह से अपने सर को पकड़ के उम्मे फदल के घर से चला गया, इसी हालत में वहां से गया है। इसके बाद कहा जाता है कि विद इन फ्यू डेज इसकी तबीयत बिगड़ने लग गई, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, इसकी तबीयत बिगड़ी, इसको कुछ दिन के बाद बुखार आया, बुखार के बाद इसको कहा यह जाता है सीरत की किताबों के मुताबिक कि इसको स्मॉल पॉक्स निकल आए थे, स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया था। और स्मॉल पॉक्स के बारे में 20th सेंचुरी तक हम सब जानते हैं, इट वॉज अ डेडलीस्ट कंटेजियस डिजीज, डेडलीस्ट कंटेजियस डिजीज, जिसमें इंसान को कुछ दिन में बुखार आता है, एक दफा अगर इन्फेक्ट हो जाए इंसान उससे, उस वायरस से, और उसके बाद इंसान को बुखार के बाद जिस्म के ऊपर ब्लिस्टर्स और बॉयल्स बनने लग जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। अगर अब अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको महफूज रखे, ऑल्दो कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, बट अगैन द वायरस इज स्टिल इन सम पीपल जेनेटिक कोड, इसलिए कि वैक्सीन था सब तक तो नहीं पहुंची थी, प्लस देर इज सो मच एम्बिग्विटी इन द वर्ल्ड। तो अभी भी इवन साइंटिस्ट कुछ सालों पहले भी कह रहे थे कि अगर आउटबर्स्ट स्मॉल पॉक्स का दोबारा हो गया तो अब 1-2 बिलियन नहीं, अब तो लगता है 6-7 बिलियन ही इस स्मॉल पॉक्स से जाएंगे। इट्स अ कंटेजियस डेडली डिजीज। इस शख्स को ये कहा जाता है कि ये स्किन डिजीज में स्मॉल पॉक्स टाइप इसको ये बीमारी हुई थी, जिसमें इसके पूरे जिस्म पर, अगर आप अभी भी कभी गूगल करें स्मॉल पॉक्स पेशेंट, आपसे देखा नहीं जाएगा तस्वीरों में, बिकॉज वो पूरा जिस्म इंसान का जैसे बार्क होती है एक दरख्त की, वो लकड़ी जो कि ड्राई होके गिर रही होती है, वो इस तरह की हो जाती है इंसान की स्किन। और ये स्मॉल पॉक्स इंसान को निकलता था इनसाइड आउट, जो उसकी कैफियत स्किन के बाहर ब्लिस्टर्स की होती थी, उसके ऑर्गन्स के अंदर भी ब्लिस्टर्स ऐसे ही आ जाते हैं। अल्लाह ताला हर तरह की बीमारी के शर से महफूज रखे। इस शख्स को यह बीमारी हो गई और 7 से 8 दिन में कहा जाता है कि इसकी हालत बुरी तरह बिगड़ गई, इसका पूरा जिस्म कवर हो गया इन ब्लिस्टर्स के साथ, यहां तक कि इसके अपने घर वाले, इसकी अपनी औलाद इसको खाना दूर से फेंक कर चली जाया करती थी, इसको दिया नहीं करती थी खाना, इसको दूर से खाना फेंकती थी। हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इट इज, यू कैन जस्ट इमेजिन, दूर से खाना फेंकती थी, वहां ये पड़ा रहा, किसी ने इसका इलाज नहीं किया, वहीं एड़ियां रगड़ते रगड़ते अपने कमरे में इसको मौत आ गई। इसके खानदान और इसके बेटों में से कोई इसके पास ना आया, वो जो हर वक्त इसकी कंपनी में इसके आगे पीछे इसके सोशल स्टेटस की वजह से फिरते रहते थे, कोई फ्रेंड इसके करीब ना आया, बिकॉज इट वॉज अ डेडली कंटेजियस डिजीज। यहां तक कि मर भी गया तो इसकी बॉडी रॉटन होने लग गई घर में, जब नेबर्स में स्मेल आना शुरू हुई तब उन्होंने इसकी औलाद से, इसके बेटे से और इसकी बेटी से कहा कि कम से कम अपने बाप को दफनाने का तो इंतजाम करो। कहा जाता है कि इसके पास, इसके जिस्म के पास एक इंसान आने को तैयार नहीं था। इसके बेटों ने एबिसिनियन स्लेव्स को बुलाया, उन्होंने डिच बनाया, दूर जाकर एक गढ़ा बनाया और लकड़ी के एक बड़े से लॉग के साथ, लकड़ी का एक बड़ा सा लॉग लेकर उससे इसके जिस्म को, कैन यू इमेजिन द डिसरिस्पेक्टफुलनेस हियर, इसके जिस्म को उस लॉग से पुश कर करके उस डिच में डाला, उस गढ़े में डाला और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए गए। दिस वॉज द अंजाम ऑफ अबू लहब एंड दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तब्बत यदा अबी लहब्यू व तब, जिसके ऊपर से अल्लाह की प्रोटेक्शन हट जाए उसे कोई बचा नहीं सकता, जिसके ऊपर अल्लाह की कर्ज आ जाए वो कहाँ बच के जा सकता है, जो अपने आप को अल्लाह से दूर कर ले उसको सुकून और राहत कहाँ मिल सकता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी मोल ले ले उसको इज्जत और रिस्पेक्ट कैसे मिल सकती है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक एक आयत से अपने अमल के लिए बेहतरीन गाइडेंस लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बीमारियों के शर से, मुश्किलात के शर से, रिश्तों के शर से, इंसानों की तरफ से आने वाली आजमाइशों के शर से, हालात के शर से और शैतान के शर से महफूज रखे। अल्लाह हमें अपने नफ्स के शर से महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबी हमदीका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा रज़ुक्ना फी रमदान ताअतल खाशईन वश्रह फी रमदान सुदूरना बि इनाबतिल मुखबतीन बि अमामिका या अमानल खाइफीन। अल्लाह ताला हमसे राजी हो और अल्लाह हमें कलमे पर मौत नसीब फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।